साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पाथुरकर। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझान आना प्रारंभ हो चुके हैं और आज मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे बैतूल जिले के मुलताई विधानसभा से पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रारंभ हो चुकी है और आपको क्या लगता है रुझानों को देखकर कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कमल या कमलनाथ की या अन्य किसी और की?
देखिए, बिल्कुल इस समय जी देखिए, इसका जो है कई तरीके से विश्लेषण हो सकता है। जो अभी तक जो रुझान आए हैं पोस्टल बैलेट वाले, उसके अंदर अगर कांग्रेस को 49 और बीजेपी को 46 दिखाया जा रहा है, तो जो लोग ये मान रहे थे कि नेक टू नेक फाइट है, वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक ही है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को 33 और बीजेपी को 29 दिखाया जा रहा है, वो भी जो है उसकी अपेक्षा के अनुसार ही है। और तेलंगाना के अंदर बीआरएस का जो है वो 19 और कांग्रेस का 23 बताया जा रहा है, वो ठीक है। और यहाँ पर भी राजस्थान में भी जो है कांग्रेस 56 पे आगे चल रही है और बीजेपी 51 से पिछड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो तो जो एक तरीके से पब्लिक डोमेन के अंदर बातें थी वो है ही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सबके अंदर गारंटी की सबसे बड़ी भूमिका है। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना की जो स्कीम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल स्कीम रही है और उसी से जो भी कुछ मिल रहा है या भाजपा बच रही है या भाजपा आगे जा रही है, तो वो लाडली बहना वाली उसकी मुख्य योजना है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, पिछली बार तो धान का था मामला, 2500 रुपए क्विंटल का जो धान का था कि 15 क्विंटल खरीदेंगे। इस बार जो है, कल मेरी रात को जब किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार 2 लाख की वो जो संपूर्ण कर्जा मुक्ति का मामला है। अब ये संपूर्ण कर्जा मुक्ति जो है ये बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी पहले तो 2 लाख रुपए के ऊपर ही नहीं टिक पाई थी। मध्य प्रदेश में 2 लाख का उसने वायदा किया था, लेकिन 2 लाख भी वो पूरा मतलब नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी सरकार चली गई थी। 50,000 तक ही लोगों का, किसानों का वहां पर मुक्ति हुई थी। और इस बार भी मध्य प्रदेश में उन्होंने 2 लाख का कहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने संपूर्ण कर्जा मुक्ति की बात कही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो किसान है उसके ऊपर इस योजना का सबसे ज्यादा असर है, तो मैं योजना के हिसाब से कहूँ। इसी तरीके से मैं राजस्थान का अगर आपको मैं कहूँ तो राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना जो है, मतलब वो ही है कि जो 25 लाख से 50 लाख रुपए का जो एक तरीके का स्वास्थ्य का बीमा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी योजना के ऊपर सबसे ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना में जो पूरा एंटी इनकम्बेंसी है, जबरदस्त जो है बीआरएस के खिलाफ में, चंद्रशेखर राव के खिलाफ में, उसमें वो जो बच पा रहे हैं वो भी अपनी गारंटी से बच पा रहे हैं और वो गारंटी उन्होंने किसानों को भी दी है। उन्होंने जो है किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो रेतु बंधु योजना चलाई है, दलितों के लिए 5 लाख 10 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री और वैसे ही एक तरीके से बांट दिया है। तमाम सारी योजनाएं जो हैं वो है। और इस बार ये भी है कि सभी जगहों पर महिलाओं का जो है एक बड़ा रोल है। जी
भाई साहब, जैसा कि आपने अभी देश में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सीधी सीधी अपनी बात कही, चूंकि आप संपूर्ण देश भर में भ्रमण करते हो और जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाते हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी
देखिए जो तेलंगाना में जो स्थिति है उसमें तो AIM का एक भूमिका है
जी।
ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की बड़ी ताकत है तेलंगाना के इलाके में, लेकिन जो हैदराबाद वाला जो पूरा इलाका है उसमें AIM की भी अपनी ताकत है। और अगर आप ये देखें तो अब ये किसकी स्मार्टनेस है मालूम नहीं, लेकिन जो है 19 और 5 अगर आप देखें तो 24 होता है और कांग्रेस जो है वो 23 के ऊपर रह गई है। तो अब मतलब मैं तो इसकी अपेक्षा कर रहा हूँ, है ना। ज्यादातर लोग जो मतलब मान के चल रहे हैं कि तेलंगाना में हवा बह रही है कांग्रेस की और कांग्रेस जो है सबसे पहले अगर मतलब निकलेगी तो वो निकलेगी तेलंगाना से। मेरी पहले से इसके अंदर सहमति नहीं रही है, मुझे मेरी सहमति इस बात से रही है कि सबसे पहले अगर कांग्रेस निकलेगी तो छत्तीसगढ़ निकलेगी, और वो होता हुआ दिखलाई पड़ भी रहा है। तो ये स्थिति है जी।
जी जैसा कि आपने पूरे संपूर्ण देश भर में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे उसके ऊपर आपने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आज इस अवसर पर मतगणना प्रारंभ हो चुकी है और 5 राज्यों में मतगणना के रुझान भी आना चालू हो चुके, आपके अपने गृह जिले बैतूल में क्या स्थिति है?
बैतूल के अंदर स्थिति जो है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग है। आम तौर पे बैतूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुल्ताई में अगर मैं कहूं तो वहां पर भी कांटे की टक्कर है
जी।
वहां पर जो एक तरीके से एक्टिव है, वहां पर जो विधायक हैं सुखदेव पांसे, तो उनके एक्टिविटी को लेकर के वो जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं वो उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन चंद्रशेखर देशमुख का जो स्वभाव है सबसे मिलने जुलने का, वो उनका एक प्लस पॉइंट है। तो जो पार्टियों का जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर दोनों के पास में है ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास में अपना अपना ढांचा है। वो ये है कि कांग्रेस का ढांचा मतलब दिखलाई पड़ता है, बोलता हुआ वोकल लोग हैं, और चंद्रशेखर देशमुख जी का उस तरीके से नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि शहर जो है, शहर के अंदर जो स्थिति रहेगी आम तौर पे जैसी शहरों में रहती है, वो भाजपा के कुछ की तरफ झुकी हुई दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर सभी जगहों पर सामाजिक जो है समीकरण बहुत ज्यादा काम करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एक समाज है कुनबी समाज, उसकी जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोनों ही एक समाज से आते हैं, कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार, इसीलिए ही दोनों को टिकट देने का काम करती हैं पार्टियां। तो समाज किसके साथ में आगे बढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो बाकी जो दूसरी जो जातियां हैं, चाहे पवार समाज है, केराड़ समाज है, और जो समाज है वहां पे रघुवंशी समाज है ना, ये सब समाज के लोग मुझको लगता है कि इनकी भूमिका जो है शायद अगर ये कांग्रेस के साथ में अगर कम जाते हैं तो फिर दूसरा पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी तो ये इसी तरीके का फाइट चलेगी। दूसरी तरफ बैतूल के अंदर जो है वो निलय डावगा और हेमंत खंडेलवाल जी के बीच में है। मुझे ये बताया गया है, जितने भी स्रोतों से मैंने बात की, सभी का ये कहना है कि हेमंत खंडेलवाल जो है उनका जो वर्चस्व है जिले में और लंबे समय से बना है, पहले मुन्नी भैया जो है 5-7 बार सांसद रहे और उसके बाद में सब कुछ उन्हीं खंडेलवाल परिवार के हाथ में, तो उसके खिलाफ में एक वातावरण बना हुआ है बैतूल विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले के अंदर। तो उससे मतलब उनके ही लोग जो है उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं भाजपा का, तो इसलिए बैतूल में कांग्रेस जो है वो कुछ बेहतर करती हुई समझ में आ रही है। भैंसदेही के अंदर स्पष्ट लोगों का कहना है कि धर्मू सिंह जो है वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में वहां पर होंगे। भैंसदेही के अंदर घोड़ा डोंगरी के अंदर राहुल जो है वो एक्टिव दिखलाई पड़ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन आमला में बहुत मेहनत जो है कांग्रेस की कैंडिडेट ने की और यहाँ पर वो निशा बांगड़े जो थी उनको टिकट मिलता तो एक अलग स्थिति होती, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया मालवीय जी को, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन वहां पर डॉक्टर पंडागरे का एक ज्यादा एक असर दिखलाई पड़ता है, क्योंकि आमला क्षेत्र जो है उसके अंदर आमला प्रॉपर आता है जो कि एक किस्म का शहर है, और सारणी आता है वो भी एक वैसा पॉपुलेशन है। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से भाजपा की एक ज्यादा वो जो है एक ताकत दिखलाई पड़ रही है। लेकिन इन सब बातों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ये हम लोगों का अपना आकलन है। जनता सर्वोपरि है, वही तय करती है, और जो वो तय करती है उसको मानने के लिए लोकतंत्र में हम सब लोगों को तैयार होना चाहिए। मुझे लेकिन बैतूल जिले के बारे में ये जरूर कहना है कि बैतूल विधानसभा क्षेत्र में जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ऐसा मध्य प्रदेश में मैंने होते हुए नहीं देखा। मतलब अगर चुनाव जो है वो 25-50 करोड़ का चुनाव हो जाए तो उसमें जो है मतलब किसान का क्या होगा, है ना, आम आदमी के मतदाता का क्या होगा, तो हम लोग जो आम मतदाता है ना, उसकी क्या भूमिका है चुनाव में? केवल वोट डालने की भूमिका है उसकी? चुनाव तो वो कभी लड़ ही नहीं सकता, जो गरीब आदमी है तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो ये लोकतंत्र जो है ये मतलब बहुत सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, फिजूल खर्ची मतलब या कहा जाए कि चुनाव खर्चे को लेकर के, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक इसके बारे में गंभीरता से विचार करें,
जी
ये इलेक्टोरल रिफॉर्म का मामला है, चुनाव सुधार का मामला है।
डॉक्टर साहब, हम आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने संपूर्ण देश से 5 राज्यों के परिणामों पर अपनी बात कही, बैतूल जिलों के समस्त विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी बात कही, हम आपसे जानना चाह रहे कि वर्तमान में जो आज परिणामों की घोषणा होगी और सरकार जो भी बने, इसमें लाडली बहना और नारी सम्मान का क्या तालमेल रहा है? कितना असर होगा दोनों राजनीतिक दलों को? किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा?
देखिए, महिलाएं जो हैं, लाडली बहना योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना 100% तय है, लेकिन वो जो है महिलाएं जिस संख्या के अंदर हैं, उसमें से 50% महिलाओं को ही जो है लाभ मिल रहा है लाडली बहना का, लेकिन बाकी सबकी उम्मीद है। और ये जो 1250 दे रहे हैं और कहा है कि हम 3000 तक देने का काम करेंगे, इसका तो एक असर पड़ने ही वाला है। जो भी कुछ भाजपा को मिल रहा है, जो भी कुछ भाजपा आगे बढ़ रही है, वो लाडली योजना जो है उसका सबसे ज्यादा वो काम कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो है एक तरीके का जो योगदान है वो खुद का उनका है, शिवराज सिंह चौहान का है। और है बात ये कि लड़े तो थे मोदी जी और अमित शाह जी, तो मुझे लगता है कि अगर हारे तो मोदी जी और अमित शाह के खाते में जाना चाहिए, और जीते तो शिवराज सिंह के खाते में जाना चाहिए। कांग्रेस अगर हारी तो कमलनाथ जी के खाते के अंदर ही जाएगा 100%, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के अंदर और किसी को दखल देने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी है। और जीते तो भी जो है उन्हीं का माना जाएगा, और उसमें कुछ एडिशन दिग्विजय सिंह का भी मान लिया जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह को वो सीटें दी गई थी जो सीटें कभी कांग्रेस जीतती नहीं है। तो ये वाली बात है
जी। अंत में एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब आपका, आपसे, कि इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी हम बीते दिनों पर यदि बात बात करें तो किसानों के हित में निरंतर जन आंदोलन होते रहे, दिल्ली से दिल्ली तक होते रहे, और आपके अभी भी निरंतर चल रहे। इस विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में किसान संघर्ष समिति की क्या भूमिका रही?
देखिए, किसानों ने जो तय किया था, हम लोग जुड़े हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चे से, संयुक्त किसान मोर्चे ने ये तय किया था कॉरपोरेट भगाओ, भाजपा को सजा दो और देश बचाओ। तो हम लोगों ने यही अभियान चलाने का काम पूरे 5 राज्यों के अंदर किया है। हम लोग कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में गए थे, वहां पर हमने 2 पंचायतें की थी, उन्हें हराने की हमने जो है बात की थी, क्योंकि उन्हीं की हठधर्मी के चलते हमारे 380 दिन तक आंदोलन चलाना पड़ा और हमारे जो है 732 किसान शहीद हो गए। फिर जो लिख के उनके सेक्रेटरी ने जो हमको दिया था संजय अग्रवाल ने, वो धोखाधड़ी का डॉक्यूमेंट साबित हुआ। अभी तक MSP लागू नहीं हुई, अभी तक संपूर्ण कर्जा मुक्ति की बात नहीं हुई, तो पेंशन नहीं मिली, अभी तक मुकदमे वापस नहीं हुए, और अब तो किसानों के ऊपर और मुकदमे लादने का काम चल रहा है। अभी देखा आपने जो हमारे युद्धवीर सिंह थे भारतीय किसान यूनियन के, उनको कोलंबिया जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। पंजाब के और हमारे हरियाणा के भी कुछ किसानों को नोटिस भेजा गया है, न्यूज क्लिक के FIR में किसानों को जोड़ दिया गया है कि ये पैसा विदेश से आया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। तो किसान आंदोलन जो कि एक स्वावलंबी आंदोलन था और अपने संसाधनों से चलाया जा रहा था, उसको बदनाम करने की साजिश अभी भी कर रहे हैं मोदी जी, और हम इसका विरोध करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने अपनी भूमिका तय करने का काम किया था।
बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद
जी।
आपने अपना महत्वपूर्ण समय मोबाइल वाणी को दिया और अपनी बात कही। आज हम दिन भर में चाहेंगे कि आप मोबाइल वाणी पर फिर से इस मंच पर आए और अपनी महत्वपूर्ण बातें साझा करें। 5 राज्यों से बैतूल जिले को पुनः एक बार आपका धन्यवाद। सुनते रहिए मोबाइल वाणी, मिलते हैं अगली खबर के साथ।
थैंक यू
जी दोस्त।